अंजलि ने अभिमन्यु को सच्चाई बता दी थी कि इस पार्टी में उसके लिए खतरा है। अंजलि ने अभिमन्यु को सावधान रहने को कहा था। फिर भी अर्पित मोचन को ट्रैप करने और राधिका तक पहुंचने के लिए अभिमन्यु और इशिका ने रिस्क लेने का सोचा। अपने प्लान को ना बदलते हुए अभिमन्यु इशिका को सबसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए नीचे लेकर जा रहा था। साथ ही उसने पृथ्वी को कह दिया था कि वो वेन्यू की सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दे कि कोई भी बाहर ना निकल पाए। जैसे ही अभिमन्यु इशिका को लेकर सीढ़ियों से उतर रहा था, कैमरा उसकी तरफ घूम गया। सब लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इशिका को जिंदा देखकर वे सब दौड़ते हुए उन दोनों को कवर करने के लिए आने लगे। वहीं पार्टी में मौजूद केशव और अरमान ने इशिका को जिंदा देखा तो वे भी हैरान थे। उनसे अलग मित्तल फैमिली काफ़ी खुश थी, खासकर कियारा। इशिका को जिंदा देखकर कियारा ने चहकते हुए कहा, मुझे पहले ही पता था इशिका को कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत ब्रेव है। जो लड़की मुझे बचा सकती है वो खुद को आसानी से थोड़ी ना मरने देगी। नैना ने खुशी से उसका कंधा सहलाया। उनके पास में अंजलि खड़ी हुई थी। अभिमन्यु और इशिका के इतने बोल्ड स्टेप को देखकर उसने गुस्से में मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, बेवकूफ़ हैं दोनों के दोनों, जो इतना सब कुछ बताने के बावजूद यहाँ से भागने की बजाय सबके सामने आए हैं। अभिमन्यु ने अंजलि की बात नहीं सुनी थी, इस बात का उसे गुस्सा आ रहा था। वहीं केशव ने इशिका को जिंदा देखा तो उसने अरमान से कहा, मुझे हमेशा से लगता था इशिका जिंदा है, तो अभिमन्यु ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। अभिमन्यु का इरादा दिल्ली में बिजनेस करने के बजाय अपनी पत्नी के साथ रहना था, मैं ये पहले क्यों नहीं समझ पाया। उनके पास खड़े अरमान ने हल्का मुस्कुराकर कहा, हाँ इसे जिंदा देखकर मुझे भी खुशी हो रही है, लेकिन आपको नहीं लगता चाचू, इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगती है, इसकी आंखें भी आपकी तरह ग्रे हैं, आपके तो राधिका मर्चेंट के साथ रिलेशन भी अच्छे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं। अरमान ये कहने जा रहा था कि उसे ये लगता है इशिका केशव की बेटी है, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही सब समझते हुए केशव ने उसे डांटते हुए कहा, ये इतने लोगों के सामने क्या बोल रहे हो तुम, हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, कम से कम राधिका मर्चेंट की इज्जत का ख्याल करो, यहाँ मौजूद हर शख्स उसके नाम को जानता है। अरमान ने कंधे उचकाते हुए अपने होठों पर उंगली लगा ली थी। केशव ने बड़ी मुश्किल से अरमान को चुप करवा दिया था, लेकिन उनके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। केशव इशिका को काफ़ी गौर से देख रहे थे। उन्होंने अपने मन में कहा, इशिका का मेरी माँ की तरह दिखना एक इत्तफाक तो नहीं हो सकता। मुझे याद है मेरा और राधिका का कभी कोई रिलेशन नहीं बना, और अगर ऐसा होता भी तो मैं राधिका पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार था। अब जब सच जानने के बाद पता चला है कि ये राधिका की बेटी है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसके हमारी फैमिली में किसी और के साथ रिलेशन रहे होंगे। राधिका काफ़ी डिग्निफाइड है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी फैमिली में किसी ने उसके साथ गलत किया हो, इस वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई थी। केशव और राधिका का रिश्ता अपने वक्त में काफ़ी अच्छा था। केशव हमेशा से राधिका को पसंद करता था और कहीं ना कहीं राधिका के दिल में भी उसके लिए प्यार था। शायद यही वजह थी कि जब मर्चेंट फैमिली ने उस पर एक्सपेरिमेंट के लिए कहा तो राधिका के लिए केशव ने मना नहीं किया। मर्चेंट फैमिली भी यही चाहती थी कि राधिका केशव से शादी करे, पर अचानक ही सब बदल गया था। एक रात अचानक राधिका ने उसे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। केशव को लगा कि शायद वो उसे अपने दिल की बात बताना चाहती है। वो काफ़ी खुश होकर राधिका से मिलने के लिए गया था, लेकिन वहाँ तो उसने कुछ और ही वादा ले लिया था। उसने केशव से वादा लिया कि वो उसके मरने के बाद भी कभी उसका चेहरा तक देखने ना आए। पुरानी बातें याद करते हुए केशव के दिल में एक दर्द सा उठा। खुद को संभालने के लिए वो एक चेयर पर बैठ गए और इशिका की तरफ देखने लगे। इशिका और अभिमन्यु रिपोर्टर से घिरे हुए थे। इशिका को देखते ही उनके सवाल जवाब शुरू हो गए थे। मिस राजवंश, आप जिंदा थीं तो फिर अब तक आप सबसे छुपी हुई क्यों थीं? सबको यही लगता था कि आप इस दुनिया में नहीं रहीं। क्या आपने पुलिस और लोगों को धोखा दिया? क्या आपने अपनी मौत का झूठा नाटक किया? क्या ये भी किसी बिजनेस प्लानिंग के चलते था या कुछ और? मिस इशिका सिंघानिया, अगर आप जिंदा हैं तो वो डेड बॉडी किसकी थी जो ओशन में मिली थी? उस लाश का डीएनए आपकी माँ के डीएनए से मैच किया गया था और वो पूरी तरह मैच हो रहा था। क्या आपने सबको धोखा दिया मिस राजवंश? क्या ये सब आपने अभिमन्यु राजवंश के साथ मिलकर किया ताकि आपके मरने पर ये न्यूज़ लाइमलाइट में आए और राजवंश एम्पायर के शेयर और ग्रो करें? एक एक करके रिपोर्टर्स के सवाल शुरू हो गए थे। अभिमन्यु इस बारे में पहले ही जानता था। अगर वे लोग मीडिया के सामने आए तो सबसे पहले यही सवाल उठेगा कि आखिर इशिका ने अपने मरने का ड्रामा क्यों किया। सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि अगर इशिका जिंदा थी तो वो लाश किसकी थी जिसका डीएनए राधिका से मैच हो रहा था। अभिमन्यु ने इशिका का हाथ पकड़ा और उन सबसे इंटेंस वॉइस में कहा, सबके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आप मेरी वाइफ पर इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। हमने इसकी मौत का ड्रामा नहीं किया था। तो वो क्या था मिस्टर राजवंश? सारा शहर और जो भी आपको जानते हैं वे काफी दुखी हो रहे थे कि इतनी कम उम्र में आपकी पत्नी इस दुनिया से चली गई। वो जिंदा थी तो आपने अब तक लोगों को बताया क्यों नहीं? और उस डेड बॉडी के बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो सरासर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना और धोखा देना हुआ। अपना सच छुपाने के लिए आपने कहीं किसी बेगुनाह की जान तो नहीं ली ना? रिपोर्टर ने उससे काफी सख्त सवाल किया। अब वो वक्त आ गया था जब इशिका को ईशानी के बारे में दुनिया को रूबरू करवाना था। इसीलिए उसने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत करके कहा, हमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है। कुछ दिनों पहले मैं एक लड़की से मिली थी जो मेरी जुड़वा बहन होने का दावा कर रही थी। वो सच कह रही थी। बचपन में उसे मरा हुआ समझकर उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे अस्पताल स्टाफ के सहारे छोड़ दिया गया था। किस्मत से वो बच गई थी और उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। सच सामने आने पर वो मिलने के लिए आई थी, लेकिन हम दोनों एक मुसीबत में फंस गईं। किसी ने हमें किडनैप करके एक शिप पर छोड़ दिया था। इससे पहले कि इशिका आगे की सच्चाई पूरी बताती और लोग फिर से उसे गलत समझते, अभिमन्यु ने मामला अपने हाथ में लेते हुए कहा, आपकी तरह मुझे भी यही लगता था कि जो डेड बॉडी थी वो मेरी पत्नी है। ऊपर से उसका चेहरा भी सही से नहीं दिख रहा था। मिस सिंघानिया की बेटी होने की वजह से दोनों का डीएनए मैच कर गया। इस बीच इशिका पानी में डूबने की वजह से होश में नहीं आई थी। होश में आते ही उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया और इस तरह मैं आपको सारा सच बताने के लिए आगे आ गया। हमने किसी तरह का झूठ नहीं बोला है और न ही कुछ छुपाया है। मैंने सारे सबूत और सिचुएशन पहले ही पुलिस के सामने रख दिए हैं। अभिमन्यु के झूठ बोलने पर इशिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अभिमन्यु ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और आंखों के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। इससे पहले कि मीडिया वाले और सवाल पूछते, अभिमन्यु ने तेज आवाज में कहा, सच सबके सामने आ गया है, पार्टी एंजॉय कीजिए। ये इस बात का इशारा था कि अभिमन्यु इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। रिपोर्टर साइड हट गए थे। उनके हटते ही इशिका ने अभिमन्यु से नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हें इस तरह सबके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जो भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और हम उन्हें सच बताते तो ये हमें गलत समझते। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम पर सवाल खड़े करे। इस बात को यहीं जाने देते हैं, अभिमन्यु ने इशिका को समझाया। उसने इशिका के ईशानी की जगह लेने और दिल्ली में सबसे छुपकर रहने की बात को छुपा लिया था।
इशिका ने उसकी बात मान ली। हाँ, अभिमन्यु सच कह रहा था। वो चाहे कितनी भी सफाई देने की कोशिश क्यों न करे, लोग उन्हें गलत समझने वाले थे। इशिका और अभिमन्यु आपस में बात कर रहे थे। उनकी इतनी बॉन्डिंग और क्लोजनेस देखकर दूर खड़ा नक्श मन ही मन जल भुन रहा था। इशिका, तुम सिर्फ मेरी हो, फिर तुम मेरे चाचू के साथ कैसे शादी कर सकती हो? सब मेरी ही गलती है जो मैं उस आयशा की बातों में आ गया। तुम्हारी पहचान जो भी रही हो, मुझे तुम्हें अपनाने की हिम्मत करनी चाहिए थी। नक्श को मन ही मन पछतावा हो रहा था। अभिमन्यु इशिका को सबके सामने लेकर जा रहा था। वहीं इशिका की जुड़वा बहन की बात सुनकर केशव के चेहरे पर अफसोस के भाव थे। राधिका को पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अगर सच में ईशानी हमारी फैमिली की बेटी है तो सिंघानिया फैमिली ने अपनी एक बेटी को पाने से पहले ही खो दिया, केशव ने मन ही मन कहा। उनकी आंखें नम हो रही थी। इशिका इस बीच कियारा और केशव से जाकर मिल रही थी। अभिमन्यु पूरे टाइम उसके साथ था। वो जानता था कि अर्पित मर्चेंट वहीं है, ऊपर से उसने तभी उसे देखा भी नहीं था। इशिका के साथ रहते हुए अभिमन्यु की नज़रें इधर उधर थीं। वो अंजलि को देख रहा था। शायद अंजलि उनसे जाकर मिले, पर उनसे अलग अंजलि इस वक्त नैना के साथ खड़ी थी। अर्पित और आदित्य पार्टी में सबसे अलग एक कोने में थे। उनकी नज़रें इशिका पर जमी हुई थीं। इशिका को देखते हुए अर्पित ने कहा, आपको हैरानी नहीं हो रही भाई? वो लड़की इस वक्त केशव सिंघानिया से बात कर रही है। उसकी शक्ल हूबहू उसकी माँ की तरह लगती है, फिर भी उसने उसे नहीं पहचाना। लगता है राधिका और केशव के बीच जो भी हुआ वो उस बात से अनजान है। शायद यही वजह रही होगी कि अपने बच्चों को बचाने के लिए राधिका वहां से चली गई थी। उसे लगा होगा कि केशव उन एक्सपेरिमेंट से अपने बच्चों को कभी भी सेफ नहीं रख पाएगा। उसने तो खुद राधिका के लिए अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा लिए थे। आदित्य ने केशव की तरफ देखते हुए जवाब दिया, जो भी हो, ये हमारे पास अच्छा मौका है। हमारे दोनों सक्सेसफुल सब्जेक्ट हमारे साथ में हैं, वे पति पत्नी हैं। हमें उन दोनों को यहाँ से ले जाना चाहिए। इससे भी ज्यादा कीमती इनका बच्चा है। सोचो अगर किसी तरह ईशानी प्रेग्नेंट हो जाए तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। अर्पित ने अपने खतरनाक इरादे आदित्य के सामने रखे। उसे लगा आदित्य उन सबके लिए हाँ कह देगा, लेकिन तभी आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, नहीं अर्पित, हमारे पास इन दोनों को ले जाने का ऑप्शन नहीं है। जानता हूँ दोनों ही हमारे लिए कीमती हैं, पर फिलहाल इंतजाम इस तरह से किए गए हैं कि हम किसी एक को ही अपने साथ ले जा सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट को हमें थोड़ा टाइम देना होगा। हम रुककर थोड़ा वेट कर लेते हैं। इससे अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा भाई, अर्पित ने जवाब दिया। वो दोनों को ही साथ ले जाना चाहता था। मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूँ, पर फिलहाल ये ऑप्शन नहीं है, तो दिमाग से काम लो, आदित्य ने दृढ़ता से जवाब दिया। अर्पित उसकी बात पर हाँ नहीं कहना चाहता था, पर आदित्य कुछ गलत भी नहीं कह रहा था।
कुछ पल सोचने के बाद अर्पित ने अपने गुस्से को काबू करके गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, फिर तो ऐसी सिचुएशन में आप एक सब्जेक्ट को लेकर निकल जाइए और मैं यहाँ पर दूसरे के पास रह लूँगा। इन पर नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब से राधिका गायब हुई है, अभिमन्यु राजवंश ने उसका पता लगाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर रखा है। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, सिर्फ एक को ही ले जाना सही रहेगा, आदित्य बोला। ठीक है, फिर किसे ले जाना चाहते हैं आप, अर्पित ने पूछा। ये तय कर पाना वाकई मुश्किल था कि इशिका और अभिमन्यु में से वो किसे चुने। दोनों की ही इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी के बारे में वो पहले ही पता लगा चुके थे। दोनों एक दूसरे से किसी भी मामले में कम नहीं थे। हो सकता था कि फ्यूचर में उनके पास ये मौका वापस ना आए कि वे एक सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद उसे फिर से हासिल कर सकें। अर्पित आदित्य के जवाब का इंतजार कर रहा था। आदित्य की नज़रें इशिका और अभिमन्यु पर ही टिकी हुई थी। उन्हें देखते हुए उसने एक ठंडे अंदाज में कहा, इशिका सिंघानिया, हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। तैयारी करो अर्पित, अगले 10 मिनट में इशिका सिंघानिया हमारे चॉपर में हमारे साथ होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, और अगर आप चाहते हो कि सारे सस्पेंस एक ही पार्ट में या जल्द से जल्द खुल जाए तो ऐसा नहीं होगा। कहानी लंबी है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। बाकी स्टोरी पढ़ ही रहे तो प्लीज़ कमेंट भी करो। दूसरी बात, एक्सप्लोर मोर नॉवेल्स पर क्लिक करोगे तो मेरी बाकी नॉवेल्स भी दिख जाएंगी, आप उन्हें भी पढ़कर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी।